मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 19 अगस्त 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अंशिता मेघराजानी भोपाल मध्य प्रदेश से, सुरेंद्र कुमार बिंद आपका गांव है माई जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से, पंकज कुमार पटना बिहार से और अमन प्रताप सिंह गांव सतारपुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं भारत भूटान संबंध पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले दूसरी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। देखिए, जो परमाणु नीति है, भारत की परमाणु नीति, भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए हैं आपको मालूम है, और भारत की परमाणु नीति सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों, में इस टॉपिक पर तो अभी बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको खासकर गौर करना है वो ये है कि अभी 2 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री ने भारत की परमाणु नीति पर जो वक्तव्य दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। ये सतर्कता आपको मैं इसलिए बरतने को कह रहा हूं कि अभी आप जितनी भी पुस्तकें उठा करके देखेंगे उसमें भारत की परमाणु नीति का एक बहुत ही सैद्धांतिक वाक्य है, वो है नो यूज फर्स्ट, नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग या परमाणु शक्ति का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। और आपको मालूम है कि भारत ने परमाणु से समझौते से संबंधित जितने भी संधियां हैं उन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसके अपने रिजर्वेशन हैं, उसके अपने प्रश्न खरम, उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की अब तक की यह नीति रही है कि हम परमाणु शक्ति का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, लेकिन अब हम यह कह रहे हैं कि यह भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एकदम आप यूं कह लीजिए कि नीतिगत बिल्कुल बदलाव, यानी कि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम प्रथम यूज ही नहीं करेंगे, जैसी परिस्थिति होगी हम वैसा निर्णय लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसके बारे में आपको सतर्क रहना है का मतलब है जब भी आपको इस तरह की बातें पढ़ने को मिले तो आप उसे इस वक्तव्य से रिप्लेस कर दीजिएगा। दूसरी बात, अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में देखिए काफी बातें हो रही हैं और हमारे रक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि नहीं, कश्मीर पर तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, और सही बात भी है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, उस पर हम क्यों बात करें, कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र के बारे में हिंदुस्तान से बात करेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, अब जब भी बात होगी वो पीओके पर होगी, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात होगी, क्योंकि तुमने हमारे देश का हिस्सा, हमारा अपना हिस्सा हथियार रखा है, उस पर हम बात करेंगे कि हमारे हिस्से को हमें वापस दो। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है, नो टॉक ऑन जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, पीओके पर बात होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात होगी। चूंकि ये बहुत ही नीतिगत मामले हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरी चीजें होंगी इसी पर बेस्ड होंगी, तो ये आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से मौजूद रहनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लास्टिक टर्न्स टॉक्सिक, प्लास्टिक के बारे में। आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से प्लास्टिक के यूज को खत्म करने का आह्वान पब्लिक से किया है, तो इसमें कुछ बहुत अच्छे आंकड़े दिए हुए हैं, आप चाहें तो ये आंकड़े नोट कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहां एक बोर्ड है जिसे कहते हैं हम CPCB, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, शुरू में इसका संबंध जल से ही था, 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिए हैं प्लास्टिक के बारे में जो आपको नोट कर लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन्होंने ये, उस बोर्ड ने ये बताया है कि भारत हर साल, आप सोचिए कि डेली जो है, हर साल नहीं, अगर हम उसको गुणा करेंगे तब बहुत जगह डेली लगभग 25,490 टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है। प्लास्टिक वेस्ट सोच करके देखिए, बाप रे, 25,490 टन, और इसमें से केवल 10% ही ऐसा है जिसको रिसाइकलिंग डेली किया जाता है, केवल 10%। कितना बड़ा हिस्सा आप सोच करके देखिए कि वो जमीन में, पानी में, पता नहीं कहां कहां वो नष्ट हो रहा है। एक और भी आपको इन्फॉर्मेशन नोट कर लेनी चाहिए कि भारत ने बकायदे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में बनाया था और उसके तहत इसकी व्यवस्था की गई है कि जो भी प्लास्टिक बैग 50 माइक्रॉन्स से कम मोटाई के हैं उनका यूज नहीं किया जा सकता और अगर आप यूज करेंगे तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमारे यहाँ चूंकि नीति और नियमों को लागू करने का जो तंत्र है वो उतना स्ट्रांग नहीं है तो अभी भी उसके यूज चल रहे हैं। तो कुछ मैंने डेटा बताए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे तो आप फिर से इसे चेक करके आप इसे डेफिनेटली नोट कर लें और प्रश्न पूछे जाने पर कोशिश करें कि आप इसका उपयोग करें। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, जो जीन संवर्धित बीजों पर है, जिसे आप कह लीजिए कि जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स पर है। दरअसल इसकी शुरुआत इस बात को लेकर के अभी हुई है कि कुछ राज्यों ने अब जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीज है ऐसे बीजों से उत्पादन करना शुरू कर दिया है जिसे सरकार की अनुमति नहीं मिली है। देखिए, इसकी शुरुआत तो आपको मालूम है बीटी कॉटन से हुई थी, है ना। अब उसके बारे में मैं पूरे विषय पर नहीं जा सकता, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अब किसान बिना सरकार की अनुमति वाले बीजों को ही, जो जीएम सीड्स ही हैं, उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है और अब ये केवल बीटी कॉटन तक सीमित नहीं रह गया है, अब सरसों में भी और दूसरी फसलों में भी इस तरह के बीजों का उपयोग किया जाने लगा है। तो ये कह लीजिए कि किसान जानबूझकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और ये सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। इसकी शुरुआत पहले कुछ राज्यों में हुई थी, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब ये बकायदे हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में भी ये तरह कह लीजिए कि आंदोलन सा कुछ फैल गया है। तो सरकार बड़ी किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी हो रही है कि इस पर वो क्या करे, इसके बारे में क्या निर्णय ले। दो तीन दिन पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी इसको लेकर, आर्टिकल न्यूज छपी थी कि सरकार को जीएम जो फसलें हैं उसके बारे में नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। आप इसे जरूर पढ़िएगा और पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि काफी बातें आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएंगी। ये इस टॉपिक का आप कह लीजिए कि लेटेस्ट डेवलपमेंट है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, भारत भूटान संबंध। एक बात देखिए कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन की प्रिपरेशन की बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत साफ तौर पर यह बात नजर आएगी कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर पूछे जाते हैं, चाहे वह देश कितना भी छोटा क्यों ना। उदाहरण के तौर पर भूटान हमारा बहुत ही छोटा सा पड़ोसी देश है। कल्पना करके देखिए कि केवल 7.5 लाख की आबादी, 7.5 लाख की आबादी क्या होती है, लेकिन वो हमारी सीमा रेखा पर है, इस ईस्टर्न हिमालय पर स्थित है। आपको चाहिए कि आप मैप में जाकर के देखें, जो हमारा पूर्वी हिमालय है, और उधर जो उत्तर भारत का हिस्सा है वहां पर वह स्थित है इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। थिम्पू इसकी राजधानी है और सबसे बड़ी बात यह कि यह बुद्धिस्ट कंट्री है। यहाँ के जो लोग हैं 75% तो बुद्धिस्ट हैं और जो रिमेनिंग है उसमें भी 22%, जो बाकी 25% बचे उसमें से भी 22% हिंदू हैं। तो आप समझ करके देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि भारत के साथ इसका कितना निकट का संबंध होगा। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारत कितना महत्व दे रहा है अपने पड़ोसी राष्ट्रों को, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री के बाद पहली बार जो विदेश यात्रा के लिए गए थे उसमें भूटान पहला राष्ट्र था। पहली विदेश यात्रा प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भूटान की थी। यानी कि भूटान जैसे छोटे राष्ट्रों को भारत अब बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है, जो हमारे पड़ोसी देश रहे हैं, और यह हमारी अब एक तरीके से कह लीजिए कि जो पॉलिसी है, खासकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यह आपको मालूम होना चाहिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और दूसरा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश। तो आप कह लीजिए कि उन दोनों ही नीतियों के तहत भूटान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। भूटान की लोकेशन इस तरह की कुछ है कि भारत के लिए और ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए कि ईस्टर्न, जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ आप देखेंगे तो भूटान उधर चीन से भी सटा हुआ है और भारत के साथ भी सटा हुआ है, और चीन के साथ भारत के किस तरह के रिश्ते हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम ही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भूटान और चीन के बीच संबंध नहीं के बराबर है, और ये भारत के बहुत पक्ष में जाता है। भारत के साथ भूटान के केवल संबंध ही नहीं है, केवल ऐतिहासिक संबंध ही नहीं है, बल्कि दोस्तों बहुत गहरे और बहुत निकट के संबंध हैं। और भारत ने आज से ही नहीं बल्कि शुरू से ही भूटान के लिए स्टैंड लेने में, भूटान की मदद करने में कहीं कोई कसर नहीं रखी है। हमारी आजादी के बाद से 1949 में ही बकायदे दार्जिलिंग में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इमेजिन करके देखिए कि रक्षा, डिफेंस और विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स के मामले में उस संधि के तहत भूटान ने अपने को पूरी तरह से भारत पर आश्रित कर दिया था। कल्पना करके देखिए। बाद में फिर भूटान की रिक्वेस्ट पर फिर उसमें 2007 में बदलाव किए गए और फिर वो बिल्कुल समान स्तर की चीजों पर आगे संबंध हमारे विकसित होने लगे। दो बातें आपको और ध्यान में रखनी चाहिए कि भूटान अभी तक राजतंत्र था, लेकिन 2008 में वहां के जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने अपनी तरफ से वहां चुनाव करके पूरी की पूरी बागडोर को, अपनी शासकीय प्रणाली को डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया। कल्पना करके, राजा ने खुद अपना शासन लोकतंत्र के हाथ में सौंपा। और दूसरी बात कि 1971, ये कुछ ईयर होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि माइलस्टोन है, 1971 के बाद से भूटान उसके बकायदे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। और इसके लिए जो आवाज उठाई थी और जो पूरी कोशिश की थी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए, वह भारत की कोशिश से ही संभव हो सका था। तो इससे भी समझा जा सकता है कि भूटान के लिए भारत शुरू से ही कितना अधिक, आप कह लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। और भूटान दोस्तों वैसे भी सार्क का संस्थापक सदस्य है। सार्क वह संगठन है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिम्सटेक का भी सदस्य है, वो बकायदे विश्व बैंक का भी सदस्य है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी सदस्य है। दोस्तों भूटान के बारे में बातें करने के लिए बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन समय उसके लिए नहीं है। फिलहाल मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और आप ये सोचकर इस टॉपिक को किनारे मत कर दीजिएगा कि अरे ये छोटा सा देश है और इस पर क्या प्रश्न आएंगे, क्योंकि देशों का छोटा बड़ा होना सिविल सर्विस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस देश का महत्व होना इम्पॉर्टेंट है। और भूटान रणनीतिक दृष्टि से भी, जैसा कि मैंने कहा कि वो चाइना के बॉर्डर पर है, अन्य दूसरी व्यापारिक साझेदारी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण देश है। और आपको मालूम है कि हमारी चूंकि सीमा रेखा वहां से मिलती है, और जब आप सिक्योरिटी के टॉपिक को पढ़ेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक को, तो आप देखेंगे कि उस सीमा से भी भारत को कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी होती है, कभी तस्करी होने लगेंगी, कभी जो नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी हैं वो अपनी घटनाओं को जन्म दे, मतलब वहां कुछ घटनाएं घटित होंगी और इसके बाद जाकर के कोई भूटान में शरण ले लेगा, कोई म्यांमार में शरण ले लेगा। तो उस दृष्टि से भी भूटान के साथ हमारे संबंधों का बेहतर होना हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, और नो डाउट भूटान की अपनी आवश्यकता तो है ही। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, श्वेता राज नई दिल्ली से, रोहिताश गुर्जर, केशव कुमार चंदन, दीप कुमार, अलका चंदर, रूपांशु मिगलानी और अनिबर्चन पांडा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।